ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्यारे शैवम.आर की श्रोताओं, अगला कार्यक्रम बच्चों की कहानी का समय है। इसमें आप तिरुविळैयाडल पुराण की 15वां भाग को सुनने वाले हैं। इस कार्यक्रम को पेश करते हैं श्रीमती शांता सुंदरराजन जी। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।
एपिसोड 15। बच्चों, कुलशेखर पांडियन के वंश में वंगीयशेखर पांडियन के काल में मदुरई और पांड्य देश का विस्तार अपने आप हुआ। इतना विस्तार हुआ कि स्वयं राजा को यह पता नहीं चला कि उसके देश की सीमा कहां से कहां तक था। वास्तव में पांड्य राजा ने किसी देश पर आक्रमण कर अपने राज्य को विस्तृत नहीं किया था, बल्कि आसपास के चोल और चेर देश की सीमा में स्थित छोटे छोटे गांव भी अपने को पांड्य देश के अधीन घोषित करना आरंभ कर दिया था। इसका कारण था कि पांड्य देश समृद्ध और संपन्न था। अब पांड्य राजा विचलित हो गया। उसे एक और आनंद हुआ कि युद्ध के बिना ही नए गांव और शहर पांड्य देश में सम्मिलित हो रहे हैं। दूसरी ओर राज्य का प्रशासन करना मुश्किल हो गया। मंत्रीगण भी आश्चर्यचकित हो गए, परंतु उन्हें भी कोई सुझाव नहीं मिला। राजा ने मंदिर जाकर भगवान को अपनी विडंबना सुनाई और बहुत प्रार्थना की। शिव जी ने राजा की मदद करना चाहा। उन्होंने अपने गले में पहने हार जैसे सांप को दूर चित्रा यानी फेंका। वह सांप पूरी देश को एक चक्कर लगाकर अपने सिर और पूंछ को जोड़ा। उस परिक्रमा के अंदर जो भूमि भाग था उसे पांड्य देश निश्चित किया गया। तमिल में आलम का मतलब सांप है और वाय का अर्थ मुंह है। इस तरह मदुरई का और एक नाम तिरुआलवाय बन गया। राजा ने पांड्य देश की सीमा पर गढ़ यानी किला बनवाया। शहर में बहुत सारे महल और बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई। पांड्य देश की समृद्धि और संपन्नता देखकर विक्रमन नामक चोल राजा ने उस पर आक्रमण किया। तब भी शिवजी स्वयं हाथ में धनुष और बाण लेकर एक सैनिक के वेश में आए और चोल राजा की सेना को हराया। आश्चर्य की बात यह है कि उनके हर बाण में सोमशेखरन नाम लिखा था। इस तरह और एक बार पांड्य देश को भगवान ने बचाया। वंगीय पांड्यन ने शिव जी की आराधना की और अपनी तरफ से उनके लिए सोने के धनुष और बाण चढ़ाया, जिस पर भगवान सोमशेखरन नाम की नक्काशी की। बच्चों, दूसरी कड़ी में यह देखा था कि मदुरई और तमिल साहित्य का बहुत ही गहरा संबंध है। तमिल संगम, तीसरे तमिल संगम काल में वंगीयशेखर पांडियन ने तमिल भाषा को और भी विकसित करना चाहा। शिवजी ने उसकी यह याचिका सुनी और अशरीरी वाणी में बोले, राजन, मैं भी सही समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम मंदिर के पास एक भव्य मंडप का निर्माण करो। राजा ने भी मंडप बनाया। भगवान शिव एक कवि के रूप में अपने शिष्यों के साथ आकर वहाँ बसे। एक शुभ दिन वहाँ 48 कवियों की गुट यानी समूह राजा के दरबार में पधारे। राजा उनके पांडित्य से बहुत प्रभावित हुए और उन सबको मंडप में रहने का आयोजन किया। ये 48 कवि वास्तव में माँ सरस्वती के हाथ की माला का ही प्रतीक है, जिसे हम अक्षरमाला भी कहते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। प्राचीन युग में पुण्य भूमि वाराणसी में ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध याग किया। कहा जाता है कि उनकी 3 पत्नियां थी, गायत्री, सावित्री और सरस्वती। बच्चों, अब यह विज्ञान पूर्वक मान लिया गया है कि मदुरई की तरह ही वाराणसी भी ऐसा शहर है जो हजारों सालों से जीवित है और इस भूमि में सबसे प्राचीन शहर है। वहाँ पर दशाश्वमेध घाट अब भी प्रचलित है। खैर, अब कहानी पर वापस आएंगे। दशाश्वमेध पूर्ण होने के पश्चात ब्रह्मा जी स्नान के लिए अपनी पत्नियों के साथ गंगा नदी पहुँचे। तब एक विद्याधर की पुत्री, खैर अब कहानी पर वापस आएंगे। दशाश्वमेध पूर्ण होने के पश्चात ब्रह्मा जी स्नान के लिए अपनी पत्नियों के साथ गंगा नदी पहुँचे। तब एक विद्याधर की पुत्री सुमधुर गाना गा रही थी। सरस्वती जो नाद स्वरूपिणी है उस गाने में मग्न हो गई और यह भूल गई कि वह गंगा में स्नान करने आई थी। ब्रह्मा जी सावित्री और गायत्री के साथ चले गए। बाद में सरस्वती से क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया। सरस्वती ने माफी तो मांगी, लेकिन उसने कहा कि वास्तव में संगीत की देवता होने के कारण उसका संगीत में डूब जाना स्वाभाविक था। उसका निवास स्थान तो ब्रह्मा जी की जीभ है, इसलिए अगर मुझे शाप मिलता तो आपको भी कष्ट उठाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने इसे सुनकर कहा, ठीक है, आप हमारे निकट ही रहेंगे, परंतु आपके हाथ में जो अक्षर माला है उनमें से अकार से लेकर क्षकार तक के 48 अक्षरों का समूह भूलोक में श्रेष्ठ कवियों के अवतार लेंगे। सबसे पहला अक्षर जो परब्रह्म माना जाता है वह शिव स्वरूप है। स्वयं शिव जी मदुरई में। ब्रह्मा जी ने इसे सुनकर कहा, ठीक है, आप हमारे निकट ही रहेंगे, परंतु आपके हाथ में जो अक्षर माला है उनमें से आकार से लेकर क्षकार तक के 48 अक्षरों का समूह भूलोक में श्रेष्ठ कवियों के अवतार लेंगे। सबसे पहला अक्षर जो परब्रह्म माना जाता है वह शिव स्वरूप है। स्वयं शिव जी मदुरई में तमिल साहित्य के उद्धार के लिए इन कवि श्रेष्ठों को मदुरई में लाकर इन्हें विशेष आदर और सम्मान करेंगे। बच्चों, जब कभी किसी को शाप मिलता है उसमें मानव जाति के लिए कुछ न कुछ वर छिपा रहता है। ब्रह्मा जी की यह शाप भी तमिल साहित्य के लिए एक वरदान बन गया। अब कहानी को आगे बढ़ाएं। सभी 48 अक्षरों ने भगवान के पूर्व निर्धारित समय में अलग अलग प्रांतों में जन्म लिए। संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं में निपुणता प्राप्त किए। जगह जगह घूमकर मदुरई की ओर चलने लगे। भगवान की इच्छा के अनुसार वे सब एक दिन एक सुंदर वन में एक दूसरे से मिले। सभी एक जैसे वस्त्र और आभूषण रुद्राक्ष माला पहने थे। माथे पर सफेद विभूति धारण कर सच्चे शिव भक्त प्रतीत होते थे। उनसे मिलने के लिए भगवान सोम सुंदर स्वयं कवि के रूप में आए। उन्होंने कहा, कविवर, आप उत्कृष्ट कवि हैं, मदुरई के पास आ गए हैं। चलिए, पांड्य राजा आपका भरपूर आदर सत्कार करेगा। मैं आप लोगों को उस दरबार में ले चलूंगा। कवि के समूह नए कवि की सुंदरता और गंभीरता को देखकर आकर्षित हो गए। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है वैसे ही वे उनके पीछे गए। अंततः अक्षर आ के पीछे ही तो बाकी सब अक्षर आते हैं ना। पांडे राजा भी इन सब को देखकर अति प्रसन्न हुआ। बड़े ही आदर से उनकी सत्कार की और उन्हें नए संग मंडप में बसाया। उनका पांडित्य देखकर उनको संग कवि नाम रखा। कुछ दिनों में ही वे प्रसिद्ध हो गए और स्थानीय कवि उनसे ईर्ष्या करने लगे। संग मंडप में आकर वाद विवाद करने लगे। संग कवि ने मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आप हमें ऐसा कुछ मापतोल दीजिए जिससे कवियों की निपुणता और श्रेष्ठता सभी पहचान सके। भगवान ने लकड़ी का ऐसा आसन दिया जो दिव्यता। उस आसन को संग पलगई नाम रखा गया। प्रारंभ में तो एक ही सज्जन बैठ सकता हो, इतना ही बड़ा था। अगर वह कवि श्रेष्ठ होता तो तो एक और सज्जन बैठे ऐसा बड़ा हो जाएगा। यानी हर एक श्रेष्ठ कवि बैठते ही वह अपने आप बढ़ जाता था। संघ कवियों ने संघ मंडप में आकर स्थानीय कवियों के साथ वाद विवाद करके यह साबित किया कि वे ही उत्कृष्ट कवि हैं। संघ पल गए 48 बार बढ़ा और सभी बैठ गए। बाद में वे बहुत सारे पद्य और गद्य लिखे। तमिल व्याकरण विस्तार पूर्वक लिखा गया। ऐसा कह सकते हैं कि कुछ साहित्य जो प्रलय में डूब गया उन्हें फिर से लिखा गया। संघ कवि ने बहुत मन लगाकर श्रद्धा के साथ भक्ति भावना से तमिल साहित्य का ऐसा पुनरुद्धारण किया जो आज तक जीवित है। यह कार्य सुसंपन्न हुआ और संघ कवियों ने गहरी सांस ली, एक दूसरे को अपनी रचनाएं दिखाई। अचानक उनको ऐसा लगा सबने मिलकर ही सब रचनाएं की हो। सबकी शैली एक जैसे ही थी। सब भ्रमित हो गए। वे अपनी अपनी कविताओं और पद्यों को ही पहचान न पाए। फिर से मंदिर गए और अपनी विडंबना को दोहराया। अगले दिन भगवान शिवजी कवि के रूप में संघ पलगे पर बैठकर सब रचनाओं को पढ़कर हर एक कवि की रचना को पहचान लिया। कपिलर, बाणर और नक्कीरर इन महाकवियों की रचनाओं को विशेष रूप से आशीर्वाद किया। इस तरह तीसरा संगम तमिल भाषा की विधिवत विस्तार किया। इसकी वजह से ही आगे चलकर तमिल भाषा बहुत सारे देशों में फैला। आज भी श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर जैसे दक्षिण पूर्व देशों में तमिल भाषा बहुत ही प्रसिद्ध है। मलेशिया और सिंगापुर में तो ये राष्ट्रभाषा मानी जाती है। इसी तरह तमिल भाषा भक्ति साहित्य में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। यहाँ तक कि अगर भक्ति साहित्य को निकाल दो तो उस भाषा में कुछ भी न होने के बराबर है। यह सब भगवान शिव जी की असीम कृपा से हो पाया है। मित्रों, शिव जी ने निर्धन ब्राह्मण कवियों को अपनी ही कविता देकर धनवान बनाया। ऐसी एक लीला है। शनभग सुंदर पांडियन बड़ा ही रोचक व्यक्ति था। राज्यभार अच्छी तरह संभालता था, परंतु अक्सर अपनी सुंदर पत्नी के साथ नंदवन में जाकर उल्लास करता था। तमिल साहित्य का बड़ा कवि भी था। एक दिन अपनी पत्नी के बाल से जो महक आ रहा था उसके बारे में सोचने लगा। यह महक नैसर्गिक है या इन फूलों की वजह से है? उसके इस शंका को किसी से पूछने के लिए हिचकिचाता था। आखिर उसने डंडोरा भी पिटवाया। राजा के मन में जो शंका उगा है उसे जो कविता के माध्यम से दरबार में सुनाएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। अब तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। एक असंभव कार्य को राजा ने सबके सामने रखा है। किसी भी मनुष्य के मन में क्या सोच चल रहा है इसे भगवान के सिवा और कौन जान सकता है? इस चुनौती को किसी ने स्वीकार नहीं किया। एक निर्धन ब्राह्मण जिसका नाम था दरुमी इसे पढ़कर दिन दहाड़े स्वप्न देखने लगा। वह अविवाहित था और विवाह के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। बड़ा शिव भक्त था और साधारण सा कवि भी था। सोचते सोचते मंदिर आया, भगवान को प्रणाम तो किया लेकिन फिर से उसका मन स्वर्ण मुद्रा में ही केंद्रित हो गया। तब एक अद्भुत घटना हुई। उसके सामने एक ताल पत्र गिर पड़ा जिसमें एक कविता लिखी थी। दरुमी को थोड़ा बहुत समझ में आया लेकिन पूरा समझ नहीं पाया। शिवजी ने अशरीरी वाणी में कहा, दरुमी तुम इसे ले जाकर दरबार में पढ़ो, बाकी हम देख लेंगे। दरुमी को बहुत आनंद हुआ। उसके विवाह की समस्या का हल निकल गया। दूसरे दिन ही उसने कविता को लेकर दरबार में सुनाई। राजा तो आश्चर्यचकित और आनंदित हो गया। उसने यह भी नहीं पूछा कि कविता ठीक है या नहीं। उसने स्वर्ण मुद्रा उस गरीब ब्राह्मण को दे दिया। परंतु कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि नक्कीरन ने इस पर आपत्ति उठाई। उन्होंने कहा, इस कविता में अर्थ का अभाव है, कहीं तो ऐसी कमी है जिससे कविता संपूर्ण नहीं है। राजा ने पूछा, क्या आपत्ति है, समझाइए। नक्कीरन ने कहा, मनुष्य स्त्रियों के बाल में से नैसर्गिक महक नहीं आ सकता है, जो भी है वो फूलों से ही आती है। राजा सोच में पड़ गया। दरुमी को बहुत दुख हुआ। उसने शिवजी से मन ही मन प्रार्थना की। शिवजी एक कवि वेश धारण कर दरबार में आ पहुंचे। उन्होंने दरुमी की वकालत की। नक्कीरन से कहा, आपने क्या आपत्ति उठाई। नक्कीरन ने दोहराया। कवि ने कहा, केवल मनुष्य स्त्री या देव युवतियों का भी। नक्कीरन ने कहा, मनुष्य स्त्री क्या, देव कन्याओं की भी यही स्थिति है। शिवजी ने पूछा, तुम जिस भगवान शिव की आराधना करते हो उनकी देवी मीनाक्षी की तो नैसर्गिक महक होना चाहिए ना। नक्कीरन अपने विचार में अटल थे। शिवजी ने भगवान के रूप में दर्शन दिया और पूछा, अब बताओ देवी मीनाक्षी के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। फिर भी नक्कीरन ने भगवान की इस करुणा को न समझते हुए अपने विचार को ही दोहराया। अब शिवजी क्रोधित हो उठे और अपनी तीसरी आंख को खोल दी। पूरी दरबार कांपने लगी, मगर नक्कीरन अपनी बात पर अटल रहे। शिवजी ने उन्हें जला दिया। नक्कीरन उष्णता को न सहन सके और सोने की तालाब में जा गिरे। बच्चों, आगे क्या हुआ इसे अगली कड़ी में देखेंगे।